समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। श्रोताओं, आज 1 जून है और ये दिन ऐसे रिश्ते के उत्सव का दिन है जो हर बंधन से ऊपर है, यानी माता पिता का रिश्ता। आज दुनिया भर में विश्व अभिभावक दिवस मनाया जा रहा है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस निस्वार्थ रिश्ते के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने बिना किसी शर्त के हमें अपना सब कुछ दे दिया। ये उनके उस अटूट प्रेम, अथाह त्याग और आजीवन समर्थन का उत्सव है जो हमारे जीवन की सबसे मजबूत और सबसे खूबसूरत नींव रखता है। तो आज के दिन नमन है उन माता पिताओं को जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी हर उलझन को दूर करते हैं। इस रिश्ते और इस दिन के बारे में परिक्रमा कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सर फिरोजी। अ हार्ट फेल्ट हेलो, गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.FM विद शगुन चोपड़ा एंड सर फिरोजी। एंड एज सर फिरोजी टोल्ड यू लिसनर्स, टुडे वी आर ऑनरिंग एंड रिकग्नाइजिंग एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल प्लेड बाय पेरेंट्स एंड नॉट जस्ट दैट। इन आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया वी विल बी फोकसिंग ऑन अ ग्लोबल फूड एज वेल, बट मोर ऑन दैट लेटर। विल ऑल्सो गिव यू रिपोर्ट्स, capsules and attributes at the end of the program, the ending segment of the program, and there is a lot more over the next 30 minutes. But first, we'll begin with the headlines. 27 persons killed in 6 northeastern states since yesterday due to landslides and house collapses following heavy rains. IMD forecasts heavy rainfall in the region for next 7 days.
सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका उजागर करने के लिए विभिन्न देशों का दौरा करने वाले 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल उच्च स्तरीय चर्चाओं में व्यस्त।
प्राइसेस ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स रिड्यूस्ड बाय 24 रुपीस फ्रॉम टुडे।
भारत और मंगोलिया ने उलान बटार में संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण की शुरुआत की।
And in IPL cricket, 5-time champion Mumbai Indians to take on Punjab Kings in second qualifier in Ahmedabad this evening. And now listeners, it's time for our discussion segment, which is Dateline India, in which we always take a look at the developments taking place at national or global level. But before we begin, we have something special which we have picked for you listeners, so listen in. Yes, listeners. Well, all you milk lovers and health champs who are tuning in today, guess what? It's a day to celebrate the moo-mazing liquid that we all know and love. It's World Milk Day today. Well, today we're going to raise our glasses, maybe even our cereal bowls, and dive into all things milk.
बिल्कुल शगुन, और ये दिन हम सभी के लिए है क्योंकि ये लिक्विड यानी दूध, इसका हम हर किसी न किसी रूप में हम सभी इस्तेमाल करते हैं। हम चाहे सीधे दूध के शौकीन ना हो तो इसे अपने कॉफी, मिल्क शेक या स्मूदी में डालना पसंद करते हैं। तो आज का दिन हम सभी के लिए है, और बच्चे के खाने की पहली बूंद से लेकर एथलीट को मिलने वाली ऊर्जा तक दूध जीवन के हर चरण में हमारे साथ रहता है। कैल्शियम, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर ये साधारण सा सफेद लिक्विड मजबूत हड्डियों के निर्माण, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और हमारे स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाता है।
Well, yes, sir, Firozi, as you mentioned, I think somewhere or the other, one of like our listeners, they would be sipping a cup of coffee or tea with milk in it, right? Also, recognizing milk's immense value, the world comes together every year on June 1 to celebrate World Milk Day. It's a day, well, to honor not just a drink, but this as a symbol of nourishment, livelihood for millions of dairy farmers and a key part of our एवरीडे डाइट।
बिल्कुल शगुन, और दूध के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2001 में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में घोषित किया और तब से ये दिन विश्व स्तर पर सार्वभौमिक भोजन के रूप में दूध के महत्व को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है।
Well, yes, as you were also telling our listeners, Sir Firozi, in the beginning, calcium, vitamin D and enough protein is there. It is full. Milk is full of such nutrients and to build muscle for protein, basically, and buy protein, basically, and maybe even a little confidence while we are at it. Milk is nature's original energy drink. Well, if you consider, even protein shakes are there, but this white wonder has been fueling us since, well, forever.
जी शगुन, और एक तरफ हमने बात की कि किस तरह दूध जो है वो हमारे पौष्टिक तत्व का हिस्सा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि खास तौर पर दूध आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय की आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यस, वेरी एसेंशियल। आल्सो लेट मी टेल आवर लिसनर्स दैट दिस ईयर्स थीम इट्स लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। It's a call to honor dairy not just as food but as a force that nourishes bodies, sustains communities and also drives economies. It has an impact on all of these.
Ji bilkul Shagun, aur aaj Bharat doodh utpadan mein vaishvik star par agrani ban chuka hai, lekin hamesha se aisi sthiti nahi thi. Azadi ke samay desh ko doodh ki bhari kami ka samna karna pada. Desh mein salana 2 crore ton se bhi kam doodh ka utpadan hota tha. 1950-51 mein prati vyakti doodh की उपलब्धता केवल 124 ग्राम प्रतिदिन थी। हालांकि 1965 में एक बड़ा मोड़ आया, तब जब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया और श्वेत क्रांति के जनक माने जाने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया।
एंड एडिंग टू दैट सर फिरोजी, दिस लेड द फाउंडेशन फॉर ऑपरेशन फ्लड From 1970 to 1996. This is one of the world's largest rural development programs, and by the end of Operation Flood, over 73,000 dairy cooperatives were established, 700 towns and cities received quality milk daily, and India became self-sufficient in milk and even began exporting milk products. And this started a big change in India's milk industry as well. India's dairy sector grew fast and became important both nationally and globally.
बिल्कुल शगुन, और इन्हीं सब कदमों ने भारत को 1998 से दूध उत्पादन में नंबर एक पर ला दिया और अब भारत दुनिया के 25% दूध का उत्पादन करता है, जबकि वैश्विक दूध उत्पादन हर साल 2% की दर से बढ़ रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता पिछले 10 वर्षों में 48% बढ़ी है।
A notable aspect of India's dairy industry, we'll focus on that now, is the substantial involvement of women. And with 35% of women participating in dairy cooperatives, there are 48,000 women dairy cooperative societies which are operational at the village level nationwide. This fosters inclusive growth and empowering women in rural areas.
और शगुन, जब दूध उत्पादन की बात करें तो भारत के अग्रणी राज्यों में गुजरात का नाम सबसे ऊपर आता है।
राइट।
देश के कुल उत्पादन में 7.5% का योगदान देने वाला गुजरात आज सालाना 18 मिलियन टन से ज्यादा दूध का उत्पादन करता है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पिछले 2 दशकों में गुजरात ने दूध उत्पादन में 11.8 मिलियन टन की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ देश में चौथा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय दूध उत्पादन में सालाना 5.7% की वृद्धि हुई है, जबकि गुजरात लगातार प्रयासों और नीतिगत समर्थन की बदौलत 9.26% वार्षिक वृद्धि के साथ दूध उत्पादन में आगे है। गुजरात में सेक्स सीमेन डोजिंग और IVF सब्सिडी जैसी उन्नत प्रजनन तकनीकें भी किसानों को मवेशियों की नस्ल सुधारने और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
एंड लिसनर्स, वी वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट दैट इंडियाज जर्नी टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इज अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस। इट्स अ स्टोरी ऑफ विजन एंड देयर इज अ कलेक्टिव एफर्ट। From the launch of Operation Flood to the adoption of modern practices and farmer-focused schemes, we have come a long way in empowering rural communities and ensuring nutritional security.
लेकिन शगुन अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ है। आगे का रास्ता नवाचार, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग और हमारे डेयरी किसानों को निरंतर समर्थन प्रदान करने के माध्यम से तय होगा और इस दिशा में उठाया गया हर कदम हमें जीवंत और समावेशी डेयरी क्षेत्र के माध्यम से स्वस्थ, आत्मनिर्भर और मजबूत भारत के निर्माण के करीब पहुंचा रहा है।
Well, yes, milk, as we have also highlighted here, not just a drink, it is a lifestyle. It's the creamy magic that makes your bones stronger, your morning sweeter, and your cookies, let's face it, way more fun, right? And so, whether you are a diehard whole milk fan or you have found a new love for almond milk, there is also other plant-based milks that I would like to mention. Oat milk, soy milk, also it's there. Today is all about admiring our favorite drink. Well, now listeners, we'll begin with our second topic for the day. It's Global Day of Parents.
ये तो सच है के भगवान है, है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है।
श्रोताओं, किसी ने क्या खूब लिखा है, पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार। पिता शांत है सागर सा, माँ गंगा की धार। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों को राह। माता पिता, इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। माता पिता बच्चे के लिए सबसे पहले मार्गदर्शक होते हैं। वे उन्हें जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनके जीवन को आकार देते हैं। हर साल आज यानी 1 जून को माता पिता और देखभाल करने वालों के प्यार, प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है।
Well, yes, to the parents who worked tirelessly to provide to those who gave up their dreams so that we could chase our dreams, to those who held our hands when we were afraid and who cheered the loudest when we succeeded. Today, we honor you.
साल 2012 में महासभा द्वारा घोषित वैश्विक अभिभावक दिवस सभी अभिभावकों को बच्चों के प्रति उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता और इस रिश्ते के लिए उनके आजीवन त्याग के लिए सराहना करने का अवसर देता है।
Well, yes, by focusing on empowering parents, the theme which I would like to mention here, this day recognizes that family plays a central role in a child's development, well-being and also safety. Raising children in a secure, loving environment requires not only time and resources, but also emotional support. And this day, it serves as a tribute to those who dedicate themselves to that vital responsibility. And today isn't just about giving thanks, it's about recognizing the power of love that only parents know how to give. The kind that makes us believe we can do anything, the kind that supports us through every mistake and triumph alike. It's a love that doesn't fade, no matter how old we get.
शगुन, अब समय है कि अपने श्रोताओं को हम लेकर चलें देश के परिक्रमा पर और अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानें कि उनके पास क्या खास जानकारी है।
Yes, first, Sir Firozi, we'll begin with this particular report. Governor of Arunachal Pradesh, Lieutenant General Retired K.T. Panayak, yesterday honored 3 Armed Forces units for their exceptional service and contribution to the state. Our correspondent has more details from the Governor's citation ceremony held at Rajbhavan, Itanagar.
Arunachal Pradesh Governor, Lieutenant General Retired K.T. Panayak, presented the prestigious Governor's citations to 3 frontline armed forces units, the 13th Battalions of the Rajputana Rifles, the 9th Battalions of the Grenadiers Regiment and the 31st Battalion of the Assam Rifles in a dignified ceremony held at Raj Bhavan in Itanagar yesterday. The awards were given in recognition of the unit's exceptional professionalism, operational acumen, and for fostering deep synergy with civil administration and local communities in the border areas. The governor praised the units for their unwavering vigilance along the line of actual control and Indo-Myanmar border and commended their Sadbhavana initiatives, from building school infrastructures and community halls to organizing sports events and mentoring youths for national level exams and recruitments. He described these outreach activities as a cornerstone of trust building, calling it a special bohemi between the armed forces and the people of Arunachal Pradesh. The governor also highlighted the positive impact of the Vibrant Village program, including cases of reverse migrations, attributing its success in part to the support of the armed forces. Reflecting on Operation Sindoor, he stressed the importance of innovation and technological integration in defense strategies. For Parikrama, this is Rakesh Dole, Akashwani News, Itanagar.
Now, listeners, so we'll delve on the second report now that we have. The ongoing Viksit Krishi Sankalp Abhiyan 2025 in Kargil district has emerged as a major success, with scientists from Krishi Vigyan Kendra Kargil and experts from various line departments reaching out to over 5,000 farmers across multiple villages. We have more from our correspondent.
The campaign aimed at creating awareness about sustainable agriculture practice and government welfare schemes has been widely appreciated by the local farming community. Teams of agriculture scientists, field officers and subject matter specialists visited remote villages, conducting training sessions and engaged directly with farmers on their challenges and needs. During the Abhiyan, programs were held in various blocks including Shergol and Shekar Chiktan, covering more than 600 farmers. The sessions focused on vital topics such as organic farming, climate-resilient agricultural practices, integrated pest management, water conservation, and the importance of soil health. Dr. Nasreen Fatima, head KVK1 Kargil, expressed her satisfaction with the farmers' response. She said that it is heartening to see thousands of farmers actively participating and showing genuine interest in scientific farming techniques. This campaign has truly brought the experts and the farmers closer. Farmers were also sensitized about key central government schemes like PM Kisan, Soil Health Card and the Kisan Credit Card, with an emphasis on availing the benefits through proper channel. The Viksit Krishi Sankalp Abhiyan reflects the commitment of both central and local authorities to transform agriculture in the region, ensuring self-reliance and prosperity for the farming community. For Parikrama, this is Anadali from Kargil Union Territory of Ladakh.
श्रोताओं, अब आपको लद्दाख से लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड, जहां चमोली में उच्च हिमालयी घाटियों में स्थित विश्व धरोहर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आज से पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है। एक रिपोर्ट।
फूलों की घाटी खुलने के पहले दिन आज 49 पर्यटक इस खूबसूरत घाटी में पहुंचे। घाटी में प्रवेश के लिए अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन परमिट की भी सुविधा उपलब्ध है। पर्यटक वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की वेबसाइट पर जाकर अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित ये घाटी हिमालयी जैव विविधता, दुर्लभ अल्पाइन पुष्पों और कीमती जड़ी बूटियों के लिए जानी जाती है। इस घाटी में हर साल हजारों पर्यटक विभिन्न रंग बिरंगे फूलों की बहार का आनंद लेने आते हैं। इसे ब्रिटिश पर्वतारोही और वनस्पति वैज्ञानिक स्मिथ ने खोजा था। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
Now let's go down south, listeners. The Telangana state government will be distributing 3 months ration together this month to ration card holders. The ration card holders will receive their entitlements for the months for June, July and August in a single distribution cycle during this month. This initiative has been taken aiming to streamline the process and ensure timely access to essential commodities. We have more from our correspondent.
Following a letter from the Union Food and Consumer Affairs Ministry, the Telangana state government has taken up distribution of ration for 3 months, June, July and August, in one go during this month. The Fair Price shops in the state will be open throughout the month to enable the individuals and families to draw their ration. Telangana Civil Supplies Department required about 6 lakh metric tons of fine rice and about 10,000 metric tons of wheat for 3 months, as the government has taken up distribution of fine rice in the state from March this year. Accordingly, each eligible individual will get 6 kgs of fine rice per month. The distribution of ration will continue throughout this month. Over 6.5 lakh families and nearly 25 lakh individuals hold white ration card, which will be given to families below poverty line. All ration shops in the state will function till the end of this month from today. Separate electronic point of sale receipts will be generated for each of the 3 months, and the ePOS biometric authentication for each month month has to be given by the beneficiaries while drawing food grains at fair price shops. The state authorities directed the district officials to create awareness among the beneficiaries about ration supply for 3 months in one go. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा के साथ। अब वक्त है खेल के मैदान की ओर जाने का और वहां की हलचल लेने का। सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज अहमदाबाद में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। विजेता टीम मंगलवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। नॉर्वे शतरंज के महिला वर्ग में 2 बार की विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी ने कल चीन की लेई टिंगजी पर जीत के बाद 8.5 अंकों के साथ एकल बढ़त हासिल की। भारत की ही ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने सारा खादिम को हराकर 3 अंक लिए और 6.5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई। ओपन वर्ग में विश्व चैंपियन डी गुकेश आर्मागेडन राइट ब्रेक में हारकर 5वें स्थान पर खिसक गए।
And now, listeners, we'll be delving into the ending segment of our particular program, and we'll be remembering the personalities which are related to today. But first, we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
आज हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में हुआ था। रेड्डी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ने लगे। जुलाई 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा के बाद रेड्डी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े।
वे यूथ लीग से निकटता से जुड़े थे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लेते थे। 1938 में रेड्डी आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव निर्वाचित किए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और अमरावती कारागार भेज दिया गया। कारागार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वीवी गिरी के साथ सजा काटी। रेड्डी 1945 में रिहा किए गए। 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए।
1953 में वो आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1964 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 1967 से 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे।
रेड्डी 1977 में भी सांसद चुने गए जब वे लोकसभा अध्यक्ष रहे।
The events of the recent past have proved the maturity of thought and action by the millions of our toiling countrymen who have confirmed our belief in the democratic way of life. Today we can hold our heads high as the world's largest democracy. And if the democratic way of life is to last, we must look inwards and examine our thoughts and actions.
1 जून 1996 को उनका निधन हुआ। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।
हम आज वीर ईसावी सिंह को भी याद कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निवासी थे। ईसावी सिंह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय जौनपुर में अंग्रेजों से लड़ रही सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी गोदाम लूटने के अभियान में भाग लिया और वहीं गोदाम के संरक्षक डेविस की हत्या कर दी। ईसावी सिंह को पकड़ लिया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। उन्हें 1 जून 1858 को फांसी दे दी गई। वीर ईसावी सिंह को हमारा शत शत नमन।
हम आज वीर त्रिलोकीनाथ गुजैत का भी स्मरण कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के निवासी थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कोई कर नहीं अभियान में भाग लिया था। 1 जून 1930 को पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। उनको शत शत नमन।
आज कार्तिक मिश्र की भी पुण्यतिथि है। उनका निधन 1 जून 1930 को हुआ था। कार्तिक बंगाल के सेरामपुर गांव के निवासी थे। विद्यार्थी जीवन में ही वो सत्याग्रह में शामिल हो गए। पहली जून 1930 को नमक सत्याग्रह के समय प्रताप दीघी में पुलिस लूट और आक्रमण का समाचार सुना तो अत्याचार के विरोध में कार्तिक के साथ 200 लोग प्रदर्शन के लिए एकत्र हो गए। पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। मृतकों में कार्तिक भी थे। धरती माँ के वीर सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।
आज हम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त को भी याद कर रहे हैं जिनकी आज जयंती है। शगुन, नरगिस का जिक्र होते ही हम सभी के जहन में मदर इंडिया में निभाया उनका किरदार याद आ जाता है हमें। और महज 28 साल की उम्र में उन्होंने सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। आइए सुनते हैं उनकी इसी फिल्म का एक डायलॉग।
लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे। सोने की, राम कसम, लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी। आओ।
लक्ष्मी लगती हूँ देवी, राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई। मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो।
हंसू नहीं, हंसू नहीं, संसार का भार उठा लोगी देवी, ममता का बोझ न उठाया जाएगा। माँ बनकर देखो, तुम्हारे पांव भी टकमगा जाएंगे।
Well, yes, listeners, her legacy extends far beyond the silver screen as she inspires countless people with artistry and unwavering dedication. And during a career that spanned decades, Nargis made an indelible impact during the golden age of Indian cinema, playing roles in movies such as Andaz, Barsaat, also Awara. And Sri Charsubis is also there. And we have picked a beautiful song to make you reminisce and think about her. Listen into this song, listeners.
प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
आज वाजिद अली खान जी की पुण्यतिथि है। ये भारतीय हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद में से एक थे। एक पार्श्व कलाकार के रूप में इन्हें कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। इन्होंने सबसे पहले 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए संगीत दिया। इसके अलावा वाजिद खान ने कई शो भी जज किए। आइए सुनते हैं उनका एक खूबसूरत सा गीत।
Well, listeners, today it's also birthday of R. Madhavan. Well, the actor, he made his remark with Mani Ratnam's Ale Payuthe, Winning Hearts, as the passionate character that he played, which was Kartik. And since then, he has connected with audiences in many languages and also many, many roles in beautiful films, which I would like to mention here. Rang De Basanti, we know that his journey is truly inspiring, especially in the last 3 years. He has shown a lot of creativity and ambition as well.
Ji, bilkul, Shagun. Aur iske alawa Madhavan ne kai साउथ की फिल्मों में भी काम किया। और माधवन को हिंदी सिनेमा में हालांकि पहचान मिली फिल्म रहना है तेरे दिल में से। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत।
सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा, तन्हा।
Now we would like to talk about a music director, Ismail Darbar. Today it's his birthday. He embarked on his creative journey as a violinist in various orchestras, laying the foundation stone for his future as a music composer.
इस्माइल दरबार को हम दिल दे चुके सनम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ अनुमति दीजिए सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।